अल्लाह को आपसे मुझसे सिर्फ सुबहान अल्लाह चाहिए। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर 33 बार सुबह 33 बार दोबारा शाम सबको पता वजीफ है। क्या अल्लाह सुबहान अल्लाह इसका मुहताज है? क्या उसकी तस्बीहात सुबह उठकर सुबह शाम की दुआएं पढ़ो? क्या अल्लाह सुबहान अल्लाह को इसकी जरूरत है कि हम रात को सोते होकर सूरह मुल्क पढ़कर सोएं? बेनियाज है वो गनीउल हमीद। वो खुद कहता है लोगो या अय्युह अन्नास अंतुमुल फुकरा, ए लोगो तुम तो मोहताज हो। वल्लाहु अल गनीउल हमीद। वो तारीफ किया गया है उसकी तारीफ है तो सूरज भी करता है, उसकी बात तो चांद भी मानता है, उसके कब्जे में तो मौजे मारता हुआ समंदर भी है। तो तुम 7 से 4, 5, 6 फुट के इंसान तुम टिकते ही नहीं हो, और अगर जरा सी नेकी का मौका मिल गया, थोड़ा इबादत में दवाम आ गया या दीन का काम करने लग गए, पढ़ने लग गए, कोर्स करने लग गए, और फिर सोने पे सागा पढ़ाने ही लग गए, तो हम कहते लो अब मैं इतना कुछ करती हूँ तो अब भला अल्लाह मुझे नहीं जन्नत में डालेगा? देखो ना, मैंने कल भी एक दर्स दिया, और देखो मैं आज भी एक दर्स दे रही हूँ, और देखो मैंने शाम को भी एक दर्स देना है, तो मैं तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की मजबूरी बन गई। याद रखिए, थोड़ी सी तबलीग करके अल्लाह पर एहसान जताते हो तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या मुश्किल थी? 950 साल तक अल्लाह का बंदा बात करता रहा करता रहा, लोग मार मार के धुआं कर देते थे, घर के दरवाजे पे फेंक आते थे नूह को, अगले दिन सुबह फिर हजरत नूह वहीं खड़े होते थे। इन्नी दाऊद को मिला इला व नहारा, अल्लाह मैंने इनको सुबह को भी पुकारा, मैंने इनको शाम को भी पुकारा, कभी का छुपा कर पुकारा, कभी बोल कर पुकारा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की तबलीग के बाद जन्नत में कोई डिस्काउंट नहीं ले सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए जन्नत नहीं ले सके। क्यों? इसलिए कि ये नेमत ईमान जिसको आप हिदायत कहें, ये इतनी कीमती है कि अल्लाह बाप के कहने पे बेटे को नहीं देता। आंखों के सामने बेटा डूब गया। सूरह हूद की आयतें पढ़िए, या बुनैया अरकब माना, ए बेटे आ जा जल्दी से, आ जा आ जा हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। ना ना ना, मैं साबिला जबल यासिमुनी मिनलवा, बेटा मादा बरसता मटीरियलिस्टिक था करना, अब मुझे आपकी टूटी फूटी कश्ती में नहीं बैठना, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को अगर 950 साल की तबलीग के बाद कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 10%, 20%, 30%, मुझे आपको क्या उम्मीद है? हम जरा दीन का काम करें, हम चाहते हैं हमें सहूलतें मिले, अब हमें कुछ रिलैक्सेशन मिले। सबके लिए रूल्स है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो स्टाफ हूँ। सब बात माने, मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं, हमने अल्लाह से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें रखी हुई हैं कि अल्लाह ने कहना फरिश्तों इनसे डरो, ये लोगों को दीन सिखाते थे, तो फरिश्तों पीछे हो जाए, इनको हजारों लोग सुनते थे, तुम्हें पता है इनके कितने सब्सक्राइबर थे, तुम्हें पता है इनके लाइक्स कितने थे, हम ये सोचे बैठे हैं। याद रखिए, उधर किसी की नहीं चलती, इसलिए कि जन्नत पर कभी डिस्काउंट ऑफर नहीं हुआ। वो मालिक है, वो बगैर हिसाब के 70,000 को डाल दे, उसकी मर्जी है, लेकिन घर से अमल सवाले लेकर जाने पड़ेंगे। घर में परस में वैसे रखो, फिर कोई ले ना ले वो उसकी बात है। तो अल्लाह ताला कहते हैं देखो, मस्सत हम वसा व दुर्रा व जुलजिलू, ये 3 माइलस्टोन है। ये आयत बाद में जाकर देखिएगा, 214 सूरत अल बकरा। बासा फिर दर्रा व जुलजिलू, ईमान को अगर आप एक नेमत समझेंगे तो याद रखिए ईमान के रास्ते में बासा दर्रा और जुलजिलों के माइलस्टोन जरूर आएंगे। मिसाल से बात करती हूँ, आज हम इस्लामाबाद में, आपको यहाँ से लाहौर जाना है, और जाना भी जीटी रोड से, क्योंकि हाईवे पर धुंध बड़ी है, मोटरवे पर जा नहीं सकते आप। क्या ये मुमकिन है कि आप एक मेन जीटी रोड जो है उसी से ही जाएं और रास्ते में दीना ना आए, रास्ते में खारियां कैंट ना आए, रास्ते में गुजरात ना आए, ये लाहौर से पहले गुजरांवाला और कामुकी और अहमदाबाद ना आए? आएगा। लिख के रखिए, नेमत ईमान की आजमाइश बासा दर्रा और जुलजिलू से होती है। ये कभी नहीं हो सकता कि एक बंदा जाए यहां से लाहौर तो रास्ते में गुजरांवाला आए और दूसरा जाए तो गुजरांवाला ना आए। बिल्कुल इसी तरह से आज भी जन्नत के रास्ते में वो सारे स्टेशंस आएंगे जो पिछलों पे आए थे, और वो थे मस्सत हुमुल बासा वदर वज़ुलज़िलू। इसलिए कि हम बड़े सस्ते सस्ते छूटना चाहते हैं। और ये जो सूरत अलंकबूत की शुरू की आयत पढ़ी है ना, ये बिल्कुल हिजरत हबशा से मुत्तसिल वक्त की सूरत है, ये दुखी दिलों की सूरत है सूरत अलंकबूत। कैसे मक्का में सताए जाने वाले लोग थे और उनको हिजरत का हुक्म दिया जा रहा है, और वहाँ भी तकलीफें, आगे भी पीछे भी। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ, तुम्हें आजमा रहा हूँ। तुम्हें घड़ा खरीदते हो तो चेक करते हो कि इसमें छेद तो नहीं है, मेरा पानी तो नहीं बह जाएगा। तो अल्लाह तुम्हें कच्चे हाथों से जन्नत पकड़ा दे। बच्चे को आप देते हैं कोई अपनी कीमती चीज़, अपना लैपटॉप देंगे बच्चे को? वैसे माजरत आज की माएँ दे देती, टूटी स्क्रीन है, क्यों दिया आपने बच्चे को? बिल्कुल नहीं ठीक करा के देनी चाहिए आपके मियाँ को आपकी स्क्रीन, बच्चे को नहीं देना फोन। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हम अपने इतने बड़े कीमती गैजेट पकड़ा दें, ये हमारी मर्जी है। लेकिन अल्लाह कच्चे लोगों को जन्नत नहीं देगा। हिजरत हबशा जब हुई, पत्थरों पे लिटाए गए, कांटों पे चलाए गए, जहनी टॉर्चर यानी मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, ताने मेने, गुलामों को मारा जा रहा है, घर टूट रहे हैं। हम हसीब तो मन तदुल जन्नत, तुम्हारा गुमान है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन होगा। आप यहाँ से अमेरिका जाएं, डायरेक्ट फ्लाइट में भी जाएंगे ना अगर आप न्यूयॉर्क, तो कम से कम 14 घंटे आपको जहाज में बैठना है या खड़े होना है, लेकिन सवार होना पड़े बंद दरवाजों में, खुली खिड़कियां नहीं होती। हम सब रोज दुआ करते हैं दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। तो जब सीधा रास्ता मांगा तो उस रास्ते में ये सब आएंगे माइलस्टोन। हम उससे बहुत पहले सौदा करके कहते हैं ना मुझे नहीं लेनी जन्नत, मैं आई कैन पे दिस। देखिए आप घर का सौदा करते हैं, जब सौदा करते हैं तो पैसे देने हैं, फिर आप पैसे दे नहीं पाते तो फिर ब्रोकर क्या कहता है, पैसे नहीं दे सकते तो बयाना वापस। अब हम इतने बयाने के अंदर से इतना देंगे नहीं, आप पे नहीं कर पाते, फिर आपको अफसोस क्या होता है, क्या जरूरत थी सौदा करने की, ना ही किया होता 5 लाख भी चला गया जो शुरू में टोकन पे दे दिया था। बिल्कुल इसी तरह आज मैं और आप यहां से उठने से पहले खुद से पूछेंगे, रियली वी वॉन्ट जन्नत? सौदा कैंसिल तो नहीं करना, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये मुशक्कतें तकलीफें, क्योंकि जन्नत के सिराते मुस्तकीम के रास्ते में कोई बाईपास नहीं है। और सारा दिन रात हम देख रहे हैं कि हम एक एक मोहब्बत के दावे की कीमतें दे रहे हैं। शौहर बेचारा बीवी को खुश करने के जो ख्वाब उसको दिखाता है शादी के शुरू के दिनों में, कमर दोरी हो जाती है उसकी कमा कमा के, बीवी फिर नहीं खुश होती, परदेश चले जाते हैं शौहर। बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा करने से लेके पालने पोसने तक कितना कुछ माँ बाप करते हैं, फिर भी बात हो जाए तो क्या अल्लाह की मोहब्बत इतनी सस्ती? लारा लगाया हुआ मैंने अपने अल्लाह को, क्या अल्लाह की चाहत इतनी भी नहीं है कि कभी खुशी के मौके पे पूछे तो सही मालिक तुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर? देखिए 3 मौके हो सकते हैं बंदा, किसी भी इंसान की 3 मुमकिन कैफियात। नंबर 1, अल्लाह खुश बंदा भी खुश। नंबर 2, अल्लाह नाराज बंदा खुश। और 3, बंदा ना खुश पर अल्लाह राजी। पहली क्या है? मतलूब। बंदा मोमिन दुनिया में फल नुखियन्नहु हयातन तय्यिबा की तस्वीर होता है, उसकी जिंदगी क्वालिटी लाइफ होती है। अल्लाह सूरत नाहल में जो कहते हैं ना कि जो ईमान लाकर अमल सवाले करे, चाहे मर्द हो या औरत, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी देंगे, तो वो पाकीज़ा जिंदगी मोमिन की होती है। ये जो हमने बचपन से कॉन्सेप्ट सुना है ना कि चलो कुछ कर लो फिर जन्नत तो लेनी है, चलो 4 बच्चों में से एक को हाफिज बना दूं, कुछ मेरी भी आखरत बन जाए, यानी मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि अल्लाह की रजा पे चलेंगे ना तो दुनिया तो गई, वो तो बर्बाद ही होनी है, सीधी सी बात है, चलो जन्नत बनेगी। गलत बात है, पहले दुनिया जन्नत बनेगी फिर आखरत की जन्नत मिलेगी। इमाम इब्ने तैमिया का कॉल कई बार आपने सुना होगा कि आखरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले इस दुनिया की जन्नत से गुजरना शर्त है। आप इस डोर से गुजरना चाहते हैं, जाइए निकल जाएं बाहर, आप लॉबी में खड़े हो जाएं, आप कहते नहीं मुझे वो लॉबी से, वो जो बाहर का डोर है ना उससे निकलना, तो क्या ये मुमकिन है कि इस डोर से फिर आप ना गुजरे? जो लोग सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशात रखते हैं ना, वो इस डोर से निकलकर, ये रूम तो बहुत बड़ा है जाहिर है कि बाहर भी बहुत बड़ा है, लेकिन लॉबी से छोटी, आप सारे अगर लॉबी में इकट्ठे होंगे आपका सांस फूटेगा, आप कहेंगे इधर ही अच्छी थी। नहीं, आप ये कहा करें वो बाहर के डोर से जाना है। ये है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो ईमान की नेमत की कदर कर दी आपने। मैंने अल्लाह सुबहान तआला ने आपको मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, आपको नहीं देखना पड़ता। हमसे पूछिए जो बाहर रहते हैं, आप में भी कोई ना कोई जरूर बाहर रहता होगा या आपका कोई रहता होगा। जिंदगी अजीरन हो जाती है, यकीन करें, पिकनिक पिकनिक नहीं लगती, शॉपिंग शॉपिंग नहीं लगती। जब इतने चमकते मुस्कुराते हंसते चेहरों को आप देखें और जरा बात करें और वो आगे से कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड, आई एम एथियस्ट, देर इज नो गॉड, कोई कहता है जीसस इज गॉड, उस वक्त फिर आप अपने दामन में जितने आंसू डाल सकते हैं डालते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे तूने इसे समझ में नहीं डाला। ना होते मुसलमान क्या होता? मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह दिन रात कुरान सामने होता है, कोई और भी तो किताब हो सकती थी, क्या वो अपने हिसाब से कोई गलत काम करता है? जाहिर है जिसने गीता देखी वो गीता को पढ़, जिसने बाइबल पढ़ी वो बाइबल को देख रहा है, जिसने म्यूजिक शुरू से घरों में देखा वो उसको स्टडी कर रहा है। अल्लाह हमारी क्या नेकी थी कि तूने हमें इसमें रख दिया? तो अल्लाह की सुन्नत मुश्किलात और आजमाइश है। अपनी इस नेमते ईमान की कदर अगर नहीं करेंगे तो इसकी सजा बाहर की दुनिया का मुसलमान लेने लग गया। इस वक्त मैं आपको कोई खबर नहीं दे रही, अगर आपसे मुतल्लिक नहीं है तो इधर ही छोड़ जाइएगा। बाहर का मुसलमान जिसने दीन छोड़ा मसलियतों के नाम पर, हलाल छोड़ा, क्या करें गुजारा नहीं होता, हराम कमाई में बढ़ गया, और अल्लाह की रजा की बजाय नाफरमानियों से घर भी लिए, और जो कि आज उनके बच्चे कहते हैं वी आर नॉट मुस्लिम। अभी 3 माह पहले मैं अमेरिका में थी, 2 माह पहले यूके में थी, फिर उससे 1 माह पहले नॉर्वे में थी, आज आपके पास हूँ, उससे भी बीच में 15 दिन पेरिस में भी थी, उससे भी 2-4 दिन इधर कर लीजिए तो आयरलैंड में थी। यूरोप के कोने कोने को देख लीजिए, अमेरिका कनाडा को देख लीजिए। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना, आपके तो गम ही कोई नहीं, ये बिजली चली जाती तो क्या हुआ, इन्वर्टर और कितना कुछ तो आपके घरों में, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आपके जनरेटर मौजूद है, आधे की बिजली नहीं है तो ना सही, गैस नहीं होती सुबह में तो भाड़ में जाए गैस, हमारे पास बहुत सारे कुकिंग रेंज हैं ऐसे कि हम उसमें खाने बना लेते हैं, लेकिन जितना इंसान अल्लाह से दूर हुआ पता ही नहीं चला औलादे चली गई। एक एक बच्चा तो कुर्बान किया है अक्सर ने। हजरत इब्राहिम ने तो अल्लाह की रजा में बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी। आज का मुसलमान नाफरमानियों की वजह से छुरियां तो नहीं बच्चे के गर्दन पे रख पाया, लेकिन बच्चे को नाराज नहीं कर पाया, लेकिन अपने बच्चे से हाथ धो दिए। फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ मौजूद है मेरे हाथ में चीजें। जो बच्चे साइंस पढ़ जाते हैं ज्यादा वो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड, ये कैसे हो गया कि सूरज यहाँ से निकलता है तो जाके अल्लाह के अर्श के आगे सजदा करता है, हदीस है ना, वो कहते हैं कहाँ करता है, वो तो इधर से निकलता है तो वो दूसरे मुल्क चला जाता है, देखो साइंस ये कहती है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में रात होती है तो इधर सुबह हो जाती है, और यही सुबह से अगले कह लें ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं तो बिल्कुल 24 घंटे का फेर बन जाता है। साइंस तो खुदा है, आज मटीरियलिज्म के बुत पूजे जा रहे हैं। हमने पिछली सीरीज में एक लेक्चर किया मटीरियलिज्म का बुत, हमने मशीनें बनाकर सोचा कि हमारे बच्चे हमसे खुश हो गए, नहीं हो गए, नहीं खुश होंगे। अपने आप को याद रखिए, जब तक अल्लाह के लेवल और अल्लाह तआला के स्टैंडर्ड पे नहीं लाएंगे, जन्नत अगर उसने देनी है ना तो फिर दुनिया में खूब कचोके लगाएगा। ये जो जुलजुलुज़िलज़ालन शदीद है ना, जो लोग अपनी खुशी से अल्लाह के रस्ते की या अल्लाह की रजामंदी की आजमाइशों में पूरे नहीं उतरते ना, फिर अल्लाह बाय हुक और बाय क्रुक मारता है। आप अपना वक्त अल्लाह के रस्ते में लगा दीजिए, खुशी से लगाएं, नमाज पढ़ते हैं आप, अल्लाह की बात मानते हैं आप, दुनिया के भी काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह आपका कबूल करेगा। आप जब वक्त इधर से बचाएंगे ना, वो आपका किसी जगह कोई प्रॉब्लम में चला जाएगा, पकी पकाई हड्डियाँ गिर जाएगी। आप इधर से माल बचाइए, गिन के रख लें कितना बचाया था अल्लाह के रास्ते से, या किसी चीज़ में किर्स कर ली थी, एग्जैक्टली आने पाई के साथ वो किसी भी डॉक्टर के बिल में निकल जाएगा, कोई फटीक पड़ जाएगी आपको। ये अल्लाह कहते हैं ना बीमा मिलू ली नुज़ीक़, ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताला बंदे को देखना चाहता है। आपने यहाँ नहीं पे किया तो वहाँ करना पड़ेगा, और अगर वहाँ नहीं करना, जो अल्लाह के नबी के हदीस से पता चलता है कि जिसका ईमान खरा होता है ना, फिर अल्लाह उस पर आजमाइशें डालता है, मुश्किलें डालता है, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, बिल आखिर उसके जिस्म पे कोई गुनाह नहीं रहता और वो बिल्कुल पाक साफ होकर मरता है, बस फिर सीधा जन्नत है। तो ये जो मुझे सर में दर्द हुआ ना, ये कोई मेरा ही बिल था जो पे हुआ, और मेरा बच्चा जो मेरे आगे बोला, ये मेरा ही को पीछे से अल्लाह के साथ गड़बड़ वाला खाता था, और ये जो मेरे ससुराल मेरे बारे में गलत बातें कहते हैं ना, ये मेरी कोई पेंडिंग पेमेंट थी जो अल्लाह ने दिलवाई मेरे ससुराल वालों से। अगर हमें ये बातें समझ आ जाए तो हम कभी भी पीछे ना हो। अल्लाह देखना चाहते तुम करते क्या हो। ये शहादत की बातें तो बड़ी दूर की बातें, हम तो दुनिया में चलते फिरते देखें, और याद रखिए जितने खरे होंगे ना ईमान में, उतना अल्लाह आपको ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना, इस तरह दुनिया से निकाल देगा। सारी दुनिया में फितने होंगे, आपको पता भी नहीं, सारी दुनिया हौल रही है, परेशान हो रही है, आप फितर से होते, जिस पे लोग परेशान होते हैं आप उसी पे इंजॉय कर रहे होते हैं। ये पिछले तकरीबन 2 साल के कोरोना के लॉकडाउन में अल्लाह ने दीन वालों से जो जितना काम ले लिया वो पिछले 10 साल में नहीं हुआ होगा। फास्ट फॉरवर्ड के बटन के साथ काम हुआ। हदीस में आता है ना, फितने बारिश के कतरों की तरह फितने टूटते हैं। मैंने देखा है पिछले 2 सालों में बारिश के कतरों की तरह अल्लाह ने दीन का काम भी वहां वहां से ले लिया जहां कभी सोचा भी नहीं। पूरी दुनिया नेट पे आ गई, सबको पता। लेकिन खरे हो, अल्लाह देखेगा, इसको रखना है, खरा है ले लीजिए, खोट है पहले निकाल दीजिए। जितने आज खरे हैं इंशाल्लाह अल्लाह आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। आपको तो कि फौजियों को फौज में ले जाने या दुश्मन के सामने ले जाने से पहले बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों भला? कि अगर कोई कोट कपट है तो इधर ही हो जाए, पता चला दुश्मन को देख के ये भाग गया, गर्मी लग गई इसको, सर्दी लग गई। अल्लाह सुब्हान तआला आपको मुझे भी इस दुनिया में आजमाइशों में डालता है, परेशानियों में डालता है, ताकि पता लग जाए कि ये सही है भी कि नहीं। और सिर्फ वही बचेगा जो सारी कश्तियां जला कर अल्लाह की तरफ आएगा। और मुनाफिक के लिए क्या कहा, वमैयाबुदुल्लाहलाहरफिन, सूरत हज की आयत है। कुछ ऐसे जो किनारों किनारों पे इबादत करते हैं, जरा फायदा मिला तो चल पड़े, नुकसान मिला तो छोड़ दिया। नहीं, तारक बिन ज़ियाद कश्तियां जला कर आया था, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। मुनाफिक पे जो ही आजमाइश आती है ना, वो अपने निफाक की टनल में से दूसरी तरफ चल जाता है। और अल्लाह ताला ने जो कहा, हसीब अन्नास वे यकूलू आमन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते ही कितने महाज खुल जाते हैं। आजकल आपने, मैंने तो समझा ही नहीं ना इसको, कभी किसी रिवॉर्ड के पास बैठकर पूछिए, सुनाओ। बाथरूमों में नमाजें पढ़ती हैं आज के इस पढ़े लिखे दौर, महजब दौर में भी आप देखिए कि जो मुसलमान हो जाता है उसके ऊपर सख्तियाँ आती हैं। हम तो सर पे दुपट्टा पतला सा ले लें तो हमारे मियाँ की आंखों में ऐसे गुस्सा आ जाता है, और हमारा हेड कवर करना हमारे घर वालों को बुरा लगता है। हम तो ये कह दें शादी सुन्नत के मुताबिक होगी तो हमें कहते हैं, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय दिस। जिंदगी का एक एक पहलू देखिए, किधर है आपके पास वो सुन्नत के नक्शे, वो तरीके जो हम अल्लाह के नबी और सहाबा के देखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के मामले में सच्चे हों। इन सारी बातों का खुलासा, ईमान एक नेमत है, और इस नेमत की आजमाइश क्या है, कहते ना कि तौहीद ये है कि हशर में बंदा कह दे अल्लाह को कि सारा जहां खफा मुझसे तेरे लिए। वमा नकमू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, हमारा और कोई ऐब नहीं है, हमारा और कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि हम अल्लाह को एक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने जब अल्लाह के नबी का दिफा किया था मक्का के इब्तदाई दौर में, दुश्मन मार रहे थे, कचौके मार रहे थे, और आप क्या कह रहे थे, अतक्तुलूना रजुलन अय यकूल रब्बी अल्लाह, तुम अल्लाह के इस बंदे को सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि अल्लाह को एक कहते हो। यही बात मर्द मोमिन ने कही, सूरत मोमिन में आप पढ़ते हैं। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में तो कोई मुश्किल नहीं। आज भी आप 500 दाने की तस्बीह लेकर बैठ जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको तो ये पानी की बोतल रख देंगे लोग आगे, विजय आंटी जरा आगे से फूंक मार देना। और अगर नबी भी मक्का में आकर यही करते, जरा तसव्वुर में लाइए मक्का की गलियों को। अल्लाह के नबी कहते, लोगों मेरे ऊपर एक कुरान नाजिल हुआ, उसकी फलां आयत इतनी दफा पढ़ो तो तुम्हारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, और वो फलां आगे पीछे इसमें दुरूद शरीफ लगाकर तुम पढ़ो तो तुम्हारे मियाँ को बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। सच बताया कि दुश्मनी होती होती दुश्मनी? आप मक्का में हरम में बैठ जाते और लोगों को वजीफे बताते और आयतें पढ़ाते, उन्होंने सब ने आकर आपके सामने खाने रखने शुरू हो जाने थे। आज हमने वजीफों का दीन बना लिया। कल रात हम एक बड़ी निजी सी महफिल में थे तो कोई सुना रहा था, किसी ने मैसेज भेजा कि बाजी जान जरा ये प्रूव करें कि ये वजीफा मैं कर लूँ, बच्चा नहीं होगा उनका जिनका था। तो मुझे भी बाजी ने वो वजीफा दिखाया, उन्होंने कहा कि जी ये किसी ने उनको कहा है कि जिन मियाँ बीवी के बच्चे नहीं होते वो पता नहीं क्या खुश था, और मैं पता भी होता तो मैंने नहीं था बताना, कहीं आप करने ही ना लग दें वो वजीफा अगर आपको जरूरत पड़े। तो उसमें कुछ आयतें थी, कुछ लिखा हुआ था, ये सूरत इतनी दफा आगे पीछे करके मियाँ बीवी चीनी पे फूके और सुबह शाम वो चीनी खाएं। मैंने कहा बच्चा हुआ ना हुआ शुगर हो जाएगी, ये दीन है आपका मेरा? हम कहाँ चल रहे हैं? अल्लाह ने हमें वजीफों के जरिए नहीं बख्शना, सॉरी टू से दैट। अल्लाह ने सिर्फ आपको मुझे उम्रे करने से भी नहीं बख्शना, अल्लाह ने आपको मुझे सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने से भी नहीं बख्शना। अल्लाह पहले मुझे आपको पूरा फिट देखेगा, 5 फुट के वजूद को सेट करेगा उस स्केल्टन में कि ये इस्लाम के सांचे में फिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों के जरिए अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। कौन इस आजमाइश में कामयाब होता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में पूरे उतरे। जिस आयत से इब्राहिम का तारुफ कुरान में शुरू होता है ना, पहली दफा व इज़्ज़िबतला इब्राहिम, इब्तलाओं से आजमाइशों से, फातम्मा, उन्होंने पूरा कर दिया हमने नहीं किया। अल्लाह आजमाता है, अल्लाह अपने नबियों को भी आजमाता है, आपको मुझे आजमाता है। देखिए लफ्ज़ बलोना क्या है, बला का लफ्ज़ है ना, बना ब्लूकुम बिशर्री वल खैरी फितना, सूरत अल अंबिया की आयत 35 में आता है। हम तुमको आजमाएंगे शर और खैर से, फितने के तौर पे। आपने कभी लस्सी बनाई है? दही को थोड़ी सी जाग लगा कर फिर रख देते हैं, फिर सुबह उसको बलोते हैं बलोते हैं बलोते हैं, फिर ऊपर को ठंडा पानी या बर्फ डालते हैं तो मक्खन ऊपर आता है। ये बलोना है लिया ब्लू का। अल्लाह हमें आजमाइशों की मधानी में डाल के बलोता है बलोता है बलोता है, वो ऊपर मक्खन आ जाता है नीचे छाछ रह जाती है। ये है वरना ब्लू कुम बिशर्री वल खैरी फितना। और अगर इन बातों के बाद अगर एक जुमला याद रखें तो वो क्या है, कभी अल्लाह दे कर आजमाता है तो कभी लेकर, क्योंकि खुशी और गम दोनों इम्तिहान के पर्चे। आपका हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा है, आपके हर बच्चे की खुशी का मौका आपके इम्तिहान का पर्चा, आपके शोहर आपका चलाना इम्तिहान है, पक्का इम्तिहान है, आपकी सास आपका बोर्ड का पेपर है, आपके भाई बहन और आपके वो रिश्तेदार जो आपसे हमेशा ही नाराज रहते हैं वो आपकी FSC का पर्चा है, बिलीव मी। क्योंकि अल्लाह ताला हम सबकी भलाई चाहते हैं, सबसे ज्यादा जिसको हमसे प्यार है वो हमारा मालिक है। हत्ता कि अम्बिया कराम जो मबूस हुए वो सब इंसानियत की भलाई चाहने वाले थे, अल्लाह ने उनको भी आजमाया। और सूरत तगाबुन की आयत 11 में आता है, आज शाम को हमारी एक निजी क्लास में सूरत तगाबुन पूरी हो रही है, उसी की एक आयत है कि मा साब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से। इसलिए ये ना कहा करो फलां ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, फलां ने ये कर दिया। सवाल लिखिए कि ये जो मुसीबतें हम पर आती हैं क्या वजह, सबब क्या है, अल्लाह क्यों डालता, ना ही डालता तो अच्छा था। तो पहली बात है कि बच्चा कहता है मेरा इम्तिहान ना ही हो तो अच्छा है, तो अगली क्लास में कैसे आएगा। पहली बात है कि मुसीबत हमारे गुनाहों का कफारा होती है, बहुत सारे हमारे गुनाह मुसीबतों की वजह से धुल जाते हैं। दूसरी बात है हमारे दर्जों की बुलंदी का जरिया होती है, हम जन्नत के उन मुकामात तक पहुंच नहीं सकते जो हमने मांगे होते हैं या जो अल्लाह मोहब्बत में हमें देना चाहता है, तो अल्लाह ताला फिर उसके हम पे कोई मुश्किल डाल देता है, फिर हम सब्र करते हैं तो सब्र के बदले में वो दर्जा मिल जाता है। फिर तीसरी बात है कि मुसीबतों से गुजरे बगैर कामयाबियां नहीं मिलती। आप अगर अपने ऊपर दीजिए, अगर आज आप डॉक्टर हैं, अगर आज आप एक कामयाब खातून हैं, आपका बेटा CA कर चुका, आपका बच्चा डॉक्टर बना, कितनी मेहनतों से बना। आप देखिए जो बच्चे पढ़ते पढ़ाते हैं बेचारों की आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, सारा घर शादी पे गया, वो बैठे पढ़ रहे हैं। लेकिन शुरू में मेहनत कर लेते हैं, बाद में उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इज्जत तो मिल जाती है ना। इसके बरक्स अगर आप और मैं पढ़ते लिखते ना, तो फिर बाद में हो सकता है कैसे काम करने पड़ते जिसको लोग मजबूर समझते हैं। तो कामयाबियों का जीना है मुश्किल। कुछ लोग जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं, कुछ जिहाद फी दुनिया करते हैं। फी सबीलिल्लाह दुनिया, मेहनत तो दोनों जगह। शुक्र कीजिए अगर अल्लाह के रस्तों में मेहनत है, फिर अल्लाह हम पर मुश्किल इसलिए भी डाल दें कि गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। क्योंकि जब मुश्किल आती है ना, तो हमारी फितरत पे जो पर्दे पड़े होते हैं ना, वो छट जाते हैं। हर मुश्किल पे हम दुआएं नहीं करते। कई लोग तो 100-100 नफल मान लेते हैं, कई कहते हैं अच्छा इसके बाद ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। एक और वजह होती है इस मुसीबतों के आने की कि तौबा कर लो, हालात बदल जाएंगे। और एक सबसे प्यारी चीज़ इस डोर वे टू गुड डीड्स, इसी सीरीज में 2-3 दिन पहले दर्स हुआ है, ईमान नेकियों के रास्ते दिखाता है, कुछ ऐसा ही था। मेरे लिए पहले ही लेक्चर था या दूसरा था इस सीरीज का, नेकियों के रास्ते खुलते हैं। जितना ज्यादा इंसान मुश्किल के बाद कुंदन बनता है, आप किसी भी इंसान को देखिए उसकी तरफ जरूर कुछ होता है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला को दिल से पुकारना, अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है मुश्किलात से। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है किसी भी ऑपरेशन से गुजर कर। बच्चा मर गया, जवान बेटा, अकलौता बेटा चला गया, घर टूट गया, बेटी को तलाक हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद देखिए एक नई ज़िंदगी बन जाती है। ये अल्लाह की रहमत है। और सबसे बड़ी बात है कि आजमाइश में अपना मुहासबा करने की तौफीक होती है। आपको मुझे जाते जाते जो चंद टिप्स दे दूँ, करें क्या? पहली बात है आजमाइश मांगिए नहीं। आ जाए तो कामयाबी की सूरत क्या है कि शुक्र ही करें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वाऊज़ु बिल्लाहि मिन हाली अहलिन्ना। दूसरी बात है कि जब नेमत की आजमाइश आए, अब ये तो समझ गया ना कि नेमत की आजमाइश होती है, तो उसमें अल्लाह के हुक्मों पे अमल कीजिए। अगर आपके अपने बच्चों की शादियां हो रही हैं, आजकल शादियों का सीजन, आज यहाँ बैठकर दुआ कीजिए अल्लाह बच्चे की शादी की नेमत की जो आजमाइश मुझ पे आ रही है, मैं उसमें तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ूंगी, मैं तुझे नाराज नहीं करूंगी, मैं रहमत के फरिश्तों को वहां से नहीं भगाऊंगी। फिर बाद में जब घर टूटते हैं और 3-3 माह बाद तलाकें शुरू हो जाती हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, अच्छा नजर लग गई है। तो क्यों लगी नजर? आपने क्यों इतना डिस्प्ले किया अपनी नेमतों का? आपने क्यों उसको सजा संवार के सब कर? सच बताइए, किसी शादी हॉल में गए हुए सारे 1,000 बंदा आपका मुखलिस होता है? कितनों को तो आपने भी मुरव्वत में बुलाया होता कि ना बुलाया तो लड़ाई बढ़ जानी है। कईयों को इसलिए बुलाया होता है कि उनको बर्तन दी थी, अब ना बुलाया तो वो नहीं देंगे हमें अपना खर्चा पूरा करना। कई खुद ही बोल लेते हैं जी हमें जरूर बुलाई। तो क्या आपकी दुल्हन प्यारी बेटी या बहू जिसको माशाल्लाह अल्लाह ने आपकी नेमत बनाया, बनाइए उड़ाइए मुश्किल नहीं, लेकिन क्या सारे उस हाल में बैठे प्यार से देखते हैं? कितनी माएँ हौके भरेंगी, हाय हमारी बेटियों के क्यों नहीं हो रहे? कितनी दोस्तें आपकी जलेंगी, हाय इसको इतनी अच्छी बहू मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? तो ये नेमते तो अपने पास रखने की होती है। हम सारी दुनिया को दिखा के नजरें लगाते हैं, बाद में रोते हैं। फिर इसी तरह गुनाहों से दूर रहकर नेकियों में जिंदगी बसर करने की नियत करें। अगर आप मुझे कुछ भी ना कहें, सिर्फ 2 मिनट देते हैं ना आज, सिर्फ 2 मिनट, क्या आपका ये आज का लेक्चर ओनली 2 मिनट्स है? मैं आपको यही कह के जाती हूँ कि एक दफा अपनी नेमतों को जो अल्लाह ने दी है उसको उसकी आजमाइश में पूरा होना चाहते हैं ना, तो ये याद रखें कि इसके बाद दुनिया की जिंदगी भी आपकी खूबसूरत हो जाएगी। आज भी सुकून, सच्ची खुशी और इत्मीनान उन अल्लाह वालों के पास है जिनके पास कोई बहुत पंपेंट शो नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन दिल का सुकून है। वो हजरत इब्ने तैमिया कहा करते थे कि इन जन्नती माइश, लोगों ने उनको कैद में डाल दिया फिर भी खुश। लोगों ने कहा आपको घबराहट नहीं होती? कहते इतना तो सुकून मिल रहा है और मेरी जन्नत तो मेरे साथ साथ रहती है। तुमने कैद में डाल के मुझ पर एहसान किया है, मैं फोकस होकर अपना पढ़ लिख रहा हूँ, वो लॉकडाउन में डिप्रेशन में नहीं जाते। और सूरह बकरा की आयत 155 जिसको मसाइब खमसा कह लीजिए कि वल नबलु वन नकुम बिशय मिन अल खौफ वल जुई वन नक्स मिन अल अमवाल वल अनफुस अनफुस वसमरात वबशिर साबरीन। ये तो हो गई, अभी यहाँ से जाएंगे ना वापस, ये कभी नहीं हो सकता कि रोड पे कोई गाड़ी ना मिले, फिर तो हड़ताल ही होगी। आपका काम क्या, आपके ड्राइवर का काम क्या है कि उन गाड़ियों में से बचते बचते निकल जाओ। तो अल्लाह कहते हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, کبھی مشکلات میں، بھوک میں، مال میں، جان میں، کمی میں، کوئی بات ہی صبر کرو۔ تو انسان نعمتوں کی کثرت پر فخر اور تکبر کا شکار نہ ہو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے خوشی پائیں گے۔ میں نے دیکھا 5-5 لاکھ کا جوڑا پہنی ہوئی دلہن بھی ناراض ہوتی ہے، اور رانڈوں کی گڑی دے کر بھی داماد کی محبت نہیں حاصل کرتے، وہ اور ہی نخرے کرتے۔ 5 تولے کے کڑے دیں ہم ساس کو، قدر کر دے گی، وہ اس میں سے بھی کوئی نقص نکال لے گی۔ دوسری بات، کبھی خود پسندی کا شکار نہ ہو، پہنیے، اوڑھیے، کھائیے، پیئے جو اللہ نے دی اپنے لیے، تحدیث نعمت کے لیے، دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں۔ پھر اس طرح سرکش نہیں بننا، اور کبھی نعمتوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اور نعمتوں میں بڑی نعمت زندگی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ آج ہے، کل نہیں ہے۔ موت کی صورت میں کیا جاتا ہے؟ زندگی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بات کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں جس کی 2 محبوب چیزیں لے لوں، واپس لے لوں، اشارہ تھا آنکھوں کی طرف بینائی، اور وہ صبر کرتا رہے اور ثواب کی امید رکھتا رہے، تو میں جنت کے علاوہ اس کے لیے اور کسی ثواب سے راضی نہیں ہوگا۔ تکلیف یاد ہے، بیماری یاد ہے، صبر کیجیے۔ اور اسی طرح اگر خوشی ملے خوش ہوں، اپنے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کیجیے۔ آپ نے سیلیبریشن کے نام پہ اپنے لیے میری ٹینشن پالنی، سچ بتائیں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے اور شادی سے 1 ہفتہ بعد 15 دن کلوز فیملی والوں کے کیسے گزرتے ہیں؟ نیری گھبراہٹوں، شادی کا دن جو نعمتوں کا نعمت ہے، سر سے پاؤں تک نئے کپڑے، نئے جوتے، زیور توڑ لیجئے، اس دن بھی آپ گھبراہٹوں میں گزارتے تھے، بعد میں روتے ہیں وہ نہیں پہنا، وہ نہیں ملا، ہائے مہمان تھے، کوئی روٹ نہ جائے، کوئی ناراض نہ ہو، پھر بھی روٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، شادی میں ایک لڑکا ضروری ہے، ایک لڑکی ضروری، اور ایک ناراض رشتے دار ضروری، جس کو بنانا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسی تکلیف آ جائے تو سوچئے کہ چلیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، یہ مصیبت جو آ گئی میرے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ شکوہ شکایت نہ کریں، صبر کا مظاہرہ بھی کریں، اور نعمتوں میں ایک کا ذکر کروں گی انشاءاللہ، اگلے دنوں میں اور بھی لیکچرز آئیں گے جس میں ہم اس پہ بات کریں گے، وہ ہے نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اولاد۔ یہ نعمت خداوندی، ان کی اچھی تربیت کیجیے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ نے، میں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو یہ ہماری آزمائش ہے۔ مال اور دولت نعمت ہے، گاڑی نعمت ہے، سیل فون نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو کل پکڑے جائیں گے۔ سورۃ تغابن کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اولاد اور مال ازمائش ہے۔ ہاں، اللہ کے حاضر بہت ہے۔ اور آخری ورڈ یہ کہہ دوں گی کہ ہم امت مسلمہ ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو جتنا بڑا ہوتا ہے ان کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے کبھی آپ کو مجھے مسلمان ہونے کے ناطے دشمنوں کے خوف سے ڈرانا ہے، کبھی فقر اور فاقہ سے ڈرانا ہے، کبھی اولاد سے آزمائش آئے گی، لیکن آپ نے امت وسط ہونے کا کردار ادا کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک نعمت جس پہ ہم نے فیصلہ بد محسن بات کی ہے، 2 نعمتیں کون سی؟ صحت اور فراغت۔ اپنی صحت کی قدر کیجیے۔ میں سب پاکستانیوں کو اس دفعہ ایک پیغام دیتی ہوں، خدا کے لیے واک کریں، اللہ کے لیے میٹھا چھوڑ دیں، وائٹ چینی چھوڑ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہمارا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے، کھانے بھاری اور 4 قدم نہیں، گاڑی کے انتظار میں گھنٹہ کھڑے رہیں گے لیکن 4 قدم چل کے نہیں جائیں گے۔ تو اگر ممکن ہے تو یہاں سے پیدل جائیے گھر، اپنی صحت کی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہ سب نعمتیں کبھی کبھی گمراہی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل اسپیشلی بچوں کا بہت انہیلدی لائف سٹائل ہے، پتہ نہیں یہ جنریشنز آگے جا کر کیسے بن پائیں گی۔ اپنے بچوں کو لائف چیزوں کا عادی کیجیے، ان کو محنت کا عادی کیجیے۔ اور اسی طرح سے مال و دولت نعمت ہے، اپنے مال و دولت کا ایکسپوز کرنا اور اس کو ظاہر کرنا اور اسی کو پھر پکڑ کر دوسروں سے منسوب کر دینا، یہ ساری چیزیں ناشکری کی ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اس خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں، نوکر اچھے نہیں ہیں، فلاں چوری کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ تعالیٰ پہ نظریں رکھیے۔ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہیں، اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو اللہ پہ نظر رکھیے، اور آج رات کو جب سورت ملک پڑھیں گے تو پہلی آیتوں پہ غور کیجئے گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، کہ وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے بہت توجہ سے سنا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کو بہترین اور خوبصورت کر دے.